بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، ان سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہے سورہ لقمان. یہ لقمان اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت اونچے درجے کے نیک بندے تھے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن راجے اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے اونچے درجے کے نیک بندوں میں سے ہیں. ان کے نیک ہونے کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورہ لقمان ہے. یہ ان کے نیک ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. مصر ایجپت میں ایک شہر ہے جس کو عربی میں اسکندریہ کہتے ہیں اور انگریزی میں الیگزینڈریہ کہتے ہیں. وہاں ان کی قبر بتائی جاتی ہے. اللہ کے فضل سے ان کے مزار کے اوپر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. حضرت لقمان بہت کالے تھے، جیسے افریقن لوگ کالے ہوتے ہیں، حبشی. تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان بھی بہت کالے تھے. ان کے یہ ہونٹ بہت جاڑے جاڑے موٹے موٹے تھے اور یہ ناک ان کی بالکل چپٹی ناک تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے कि जाहिर में दिखने के एतबार से, जिसको हम आउटलुक कहते हैं, ये एकदम खराब था। काला रंग, होंठ जाड़े जाड़े, नाक बिल्कुल चपटी, जाहिर में दिखने के एतबार से एकदम उनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं नजर आती थी। लेकिन इतने ऊंचे दर्जे के इंसान हैं कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में उनकी बातों को नकल फरमाया है। इससे सोचो कि अल्लाह की नजर में भी उनका दर्जा कितना ऊंचा होगा कि उनकी बातें खुद अल्लाह ताला कुरान में नकल फरमा रहे हैं। बल्कि एक तफसीर में मैंने ये देखा है कि हजरत लुकमान के बयान की बातें तौरा, इंजील, कुरान और दूसरे सहाइफ में जो नकल की गई वो तकरीबन 10,000 उनकी बातें ऐसी है कि जो मुख्तलिफ आसमानी किताबों में और सहीफों के अंदर नकल की गई, ऐसी 10,000 उनकी बातें हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि काला कलोटा आदमी, नाक भी चपटी, होंठ भी मोटे, अल्लाह उनके नाम पर कुरान में एक सूरत उतार देवे, उनकी बातों को खुद अल्लाह कुरान में नकल फरमावे, तो उनका अल्लाह के यहां कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा होगा। और इससे मुझे और आपको एक बात सीखने को मिली। ये बात बहुत अच्छी तरह दिल दिमाग में बिठा लो कि किसी आदमी का रंग काला होवे, किसी का आउटलुक बाहर का देख देखाओ एकदम ठड़कलास होवे, तो उसकी वजह से उसको नीचा नहीं समझना चाहिए। आज हमारी मेंटालिटी, हमारी विचारधारा, हमारी सोच खराब हो गई है कि कोई आदमी काले रंग का है तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, किसी आदमी का बाहर का लुक देख देखाओ अगर खराब है तो लोग उसको बहुत नीचा और बहुत हकीर और बहुत मामूली समझते हैं। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। बहुत से इंसान बाहर के देख देखाव में काले हैं और उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल खराब है, लेकिन अल्लाह की नजर में उनका मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा होता है। आप इस उम्मत में देख लो, हजरत लुकमान तो पिछली उम्मतों में है, लेकिन इस उम्मत के अंदर आप देख लो कि सैयदिना हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो, इस उम्मत के कितने बड़े आदमी, हबशा यानी इथोपिया के रहने वाले थे, रंग भी उनका सांवला था, लेकिन अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम दिया कि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि वो हुजूर के आगे आगे चल रहे हैं। पहले तो अंदाजा नहीं हुआ, बाद में हुजूर को बतलाया गया कि हजरत बिलाल जन्नत में हुजूर के आगे आगे चल रहे थे, और खादिम आम तौर पर मखदूम के आगे चलते हैं। تاکہ مخدوم بزرگ جو پیچھے آ رہے ان کو سہولت پہنچاوے، آگے تکلیف دینے والی چیزوں سے ان کو بچاوے. تو حضرت بلال حبشی ہے، کالا کالے رنگ والے ہیں، لیکن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. اسی لیے آج سے یہ بات طے کر کے اٹھو کہ کسی کا رنگ کالا ہو، ظاہر کی شکل صورت اچھی نہ ہو، تو اس کی وجہ سے اس کو حقیر اور معمولی مت سمجھو. پتہ نہیں اس کالے رنگ کے اندر، دل کے اندر کیسا ایمان کا نور بھرا ہوا ہو اور کیسی ایمانی چمک بھری ہوئی ہو، ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے کلر اور رنگ کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے واسطے. حضرت لقمان کے واقعے کی ایک دوسری بات عرض کروں. حضرت لقمان کی مجلس ہوتی تھی، وہ نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، اور ان کی نصیحت کے اندر بھیڑ لگ جاتی تھی، پبلک بہت آتی تھی. ایک مرتبہ وہ نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کی مجلس ہو رہی تھی، اتنے میں ایک جانور چرانے والا آیا جو جانور کو چراتا ہے، وہ بھی نصیحت سننے لگا بھیڑ میں کھڑے ہو کر کے. جب مجلس ختم ہوئی تو وہ جانور کا چرانے والا قریب میں آیا، نزدیک آیا، اور آ کر کے حضرت لقمان کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے سوال کرتا ہے، لقمان مجھے پہچانا، میں کون ہوں؟ پھر وہ کہتا ہے، یاد ہے نا کہ تم اور میں اپنے دونوں ساتھ مل کر کے جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے، تم بھی کسی کے غلام تھے، میں بھی کسی کا غلام، تم بھی اپنے باس کے جانور لے کر جنگل میں چرانے آتے تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ جنگل میں جانور چرایا کرتا تھا، وہ دن تم کو یاد ہے؟ تو حضرت لقمان نے دھیان سے دیکھ کر کے فرمایا، ہاں بھائی یاد آ گیا کہ تو اور میں ہم دونوں مل کر کے جنگل کے اندر جانور چرایا کرتے تھے، یاد آ گیا مجھے. پھر اس نے ایک سوال کیا، وہ جنگل سے جانور چرانے والا آیا تھا، سوال یہ کیا کہ ارے لقمان، تم تو میرے ساتھ مل کر کے جنگل میں جانور چراتے تھے، یہ کہاں سے درجہ اور مقام مل گیا کہ آج تم بیان کرتے ہو اور ہزاروں لوگ تمہارا بیان سننے کے لیے بھیڑ لگاتے ہیں، یہ کیسے تمہارے اندر ہو گیا؟ تو حضرت لقمان نے اس کو چند باتیں بتلائی کہ ان چند باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. اس کے اندر ایک بات حضرت لقمان نے یہ فرمائی کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میری سچائی کی برکت سے اللہ تعالی نے میری زبان کے اوپر علم اور حکمت کی ندیاں جاری کر دی، اور آج یہ بڑا بڑے بڑے مجمع میرے بیان کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اس واقعے میں ہمارے لیے دو سبق ہیں. ایک سبق یہ ہے کہ کسی کا کام دھندا اگر ظاہر کے اندر بالکل تھرڈ کلاس ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کو حقیر اور نیچا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت لقمان ایک زمانے میں جانور چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اور اس آدمی کا نام پر اللہ قرآن میں سورت اتار رہے، अल्लाह कुरान में उनकी बातें नकल कर रहे हैं। मालूम हुआ कि किसी का धंधा, किसी का कारोबार बिल्कुल नीचा और थर्ड क्लास हो दुनिया के एतबार से, तो उसकी वजह से भी उसको हकीर और नीचा नहीं समझना चाहिए। आज हम लोगों का मिजाज ऐसा खराब हो गया है कि कोई बकरी पालने वाला, भैंस पालने वाला, जानवर चराने वाला, चप्पल ठीक करने वाला, मोची, इस तरह के काम करने वाले लोग, या यूं कहो कि मजदूरी करने वाले लोग, उनको हम बिल्कुल नीचा और हकीर समझते हैं। हालांकि ऐसे लोगों में कौन अल्लाह का वली हो हम नहीं कह सकते, कोई खुदा का वली छुपा हुआ हो। ये मशहूर नाम है, आप तालीम में, फजाइल आमाल में और बयानों में बार बार सुनते हैं, हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाही ताला अलैहा। वो किसी सेठ के यहाँ काम करने वाली थी, बांधी थी किसी सेठ की, अपने मालिक के यहाँ काम करती थी और बांधी थी हजरत राबिया बसरिया। लेकिन अल्लाह ने जिंदगी में ऐसा इनकलाब अता फरमाया कि आज उनके वाकियात किससे लोग सुनते हैं और उनकी नसीहत की बातें सुनते हैं। तो मालूम हुआ कि किसी के कारोबार की वजह से, किसी के काम धंधे की वजह से उसको हकीर और नीचा कभी नहीं समझना चाहिए। ये नसीहत है, बहुत बड़ी नसीहत है। इसी जिम्न में मैं आपको एक बात बतलाऊं, हमारी यहां मस्जिदों में मुअज्जिन होते हैं, अजान देने वाले, उनको लोग पूरे समाज में सबसे ज्यादा थर्ड क्लास समझते हैं, मुअज्जिनों को, बिचारों को। हालांकि ये अजान देने वाले अगर इखलास से अल्लाह के लिए अजान देते हैं तो इनका बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत ऊंचा मकाम है। हदीस में आता है कि ये जितने अजान देने वाले हैं उनकी गर्दन कयामत के दिन लंबी होगी, जैसे कि टावर ऊंचा होता है, इनकी गर्दनें भी ऊंची होगी लंबी, और पूरे मैदान कयामत को वो देखते होंगे और लोगों की सिफारिश करेंगे, जन्नत में ले जाएंगे। इसलिए अजान देने वालों को भी मामूली मत समझो, हकीर मत समझो। हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा है, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब जिनकी बरकत से ये दावत और तबलीग की मेहनत पूरी दुनिया में चली, उनके अब्बा का नाम हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, फजाइल आमाल वाले, उनके बेटे हजरत मौलाना मोहम्मद तलहा साहब नवरल्लाह मरकदहू की जुबान से ये वाकिया मैंने सुना कि एक मरतबा वो जो बंगले वाली मस्जिद थी दिल्ली में, जिसमें मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब खिदमत करते थे सफाई की, अजान की, उस मस्जिद के जो एक निगरान थे, मुतवल्ली, कोई नवाब अंदाज के आदमी थे, दिल्ली के बड़े रईस, वो किसी उलझन में बहुत परेशान थे और यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ दुआ के लिए दौड़ते रहते थे, खर्च भी बहुत करते थे कि उनका टेंशन दूर हो जाए। एक मर्तबा ख्वाब में उनको जियारत हुई और ख्वाब में ये कहा गया कि तुम्हारी जो उलझन है, टेंशन है, उसका हल अल्लाह ने तुम्हारी मस्जिद के मुअज्जिन मौलाना इस्माइल की दुआ में रखा है। उनसे दुआ कराओ तो तुम्हारी उलझन और परेशानी अल्लाह दूर कर देंगे। तो उन्होंने जाकर के अपने मौज़िन साहब को कहा, हजरत दुआ कर दो। तो उन्होंने दुआ कर दी तो उनकी उलझन और तकलीफ दूर हो गई। इसलिए ये बात तय करके उठो कि कोई कोई काम कारोबार मामूली करता हो, धंधा छोटा करता हो, उसकी वजह से उसको हकीर मत समझो, नीचा मत समझो, मामूली मत समझो। हजरत लुकमान जंगल में बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ये मकाम और मर्तबा दिया कि कुरान में उनके नाम पर एक सूरत है। और दूसरा सबक क्या मिला कि जंगल में जानवर चराने वाले को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया सच्चाई की बरकत से। इसीलिए दीनी भाइयों, सच्चाई की आदत डालो कि अपनी बात में हम सच्ची बात बोलने वाले बने। आज हम लोग सच्चाई को ढूंढना मुश्किल हो गया, ऐसे जमाने में आ गए। सच्चाई की आदत डालो, मस्ती मजाक में भी सच, वहां भी झूठ नहीं होना चाहिए। उसकी एक मिसाल मैं आपको हदीस शरीफ से दूं। एक बच्चा तूफान मस्ती कर रहा था तो उनकी माँ उनको बुला रही है, बेटा आजा, बेटा आजा, मैं तुझे कुछ दूंगी। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे तो हुजूर ने फरमाया, तेरे हाथ में कुछ है? तेरे हाथ में हकीकत, तेरे हाथ में हकीकत में कुछ है? तू सचमुच ये बच्चे को कुछ देगी? उसने कहा, हाँ है मेरे हाथ में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तूने सच बोला, वरना अगर सिर्फ बच्चे को बुलाने के लिए, जैसे अपने यहाँ जनरल माहौल है कि बच्चों के सामने खाली खाली माँ कह देती है, बेटा आ जाने, तुझे स्वीट दूंगी, तुझे आइसक्रीम दूंगी, तुझे कुल्फी दूंगी, और बच्चा आ जाता है तो कुछ भी नहीं, वो तो उसको बेवकूफ बना लिया बुलाने के वास्ते। ये भी झूठ की एक किस्म है, ये भी झूठ की एक शक्ल है। बच्चों के साथ भी, किसी और आदमी के साथ भी, मजाक के अंदर भी झूठ मत बोलो, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। सच्चाई की आदत डालो, जिसके अंदर सच्चाई की आदत होगी, सच्चाई का मिजाज होगा। देखिए हजरत लुकमान ने फरमाया कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इस सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया कि आज इतना बड़ा मजमा मेरी नसीहत सुनने के लिए आता है और लोग मेरी बातों को सुनते हैं। तो ये हजरत लुकमान की बात मैंने आपको सुनाई कि हजरत लुकमान के नाम पर कुरान में एक सूरत है, अल्लाह ने उनकी बातें कुरान में नकल फरमाई है, लेकिन इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सबक है हमारे वास्ते कि हम किसी काले कलोटे जाहिर में दिखने वाले खराब बदशकल आदमी को कभी हकीर और नीचा न समझे, बल्कि उसका भी इकराम और उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। अरवाह सलासा एक किताब, उसके अंदर एक बात अजीब लिखी हुई है कि दिल्ली की जो जामे मस्जिद है उसकी सीढ़ियों के ऊपर, सब तरफ उसकी सीढ़ियां हैं, दिल्ली जाकर के देख लो। तो कहा एक जमाना ऐसा था कि जामे मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर कोई न कोई एक बंदा अल्लाह का ऐसा रहता था कि जो अपने जमाने का अब्दाल और वली हुआ करता था, लेकिन वो एकदम फकीर की शक्ल के अंदर, कोई उसको पहचान भी नहीं सके, ऐसी फकीराना शक्ल के अंदर वो बैठे रहते थे, अपने काम में वो लगे रहते थे। इसलिए हमेशा का ये मिजाज बनाओ कि किसी की शक्ल सूरत की वजह से, किसी के आउटलुक और देखाव की वजह से, किसी के धंधे और कारोबार की वजह से किसी को नीचा मत समझो, हकीर मत समझो, पता नहीं अल्लाह के यहाँ किसका क्या मकाम हो। ये हमें सोचना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमा। अब ये हजरत लुकमान की बातें खुद अल्लाह कुरान में नकल फरमा रहे, वो बात मैं आपको सुना रहा हूँ। وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں اور وہ نصیحتیں اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے۔ इससे मालूम हुआ, बहुत बड़ा सबक ध्यान से सुनो कि अपनी औलाद को भी नसीहत करो, उनको भी दीन की बातें सुना। आज हमने अपने घरों के अंदर दीन की बात सुनाना ही छोड़ दिया है, बातें सुनाते ही नहीं घर वालों को दीन की। जैसा अभी हजरत मुफ्ती इमरान साहब फरमा रहे थे कि यहाँ बात सुन के जाओ और घर जाके घर वालों को भी सुनाओ, उनको भी दीन की बातें पहुंचाओ। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और कितने अच्छे अंदाज में। वह इस कॉल लुकमान लिबनी ही वह हुआ या इजो, हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे चहीते और लाडले बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। कितनी जबरदस्त नसीहत। मैं समझता हूं आज के जमाने में पूरी दुनिया के मुसलमान के हर बाप को अपनी औलाद को ये नसीहत करने की बहुत जरूरत है। इसलिए कि आज क्या है, पूरी दुनिया के अंदर शिर्क का माहौल, कुफ्र का माहौल, ईमान बर्बाद करने वाला माहौल, मुर्तद बनाने वाला माहौल, ईमान का सौदा करने वाली सारी चीजें सारी दुनिया के अंदर आम हो रही है और अलग अलग तरीकों से आम हो रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजुकेशन, एडवर्टाइज, न्यूज़पेपर, ये तमाम जितने भी रास्ते हैं उन तमाम नए कहलाने वाले रास्तों के जरिए से जो सबसे बड़ी गंदी मेहनत हो रही है वो ईमान को बर्बाद करने की मेहनत हो रही है। शिर्क आवे, कुफ्र आवे, ईमान में मिलावट और मिक्सिंग आ जावे और ईमान बर्बाद हो गए, इसकी कोशिश मेहनत हो रही है। ऐसे जमाने में हजरत लुकमान की बात, हर बाप अपने बेटे को कहवे, समझावे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे लाडले और प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क मत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ कोई इबादत में शरीक नहीं। ये बहुत अच्छी तरह समझाने की जरूरत है। और देखो, जब ये नसीहत हम करें तो शिर्क हमारे जमाने में, हमारे टाइम में जिस अंदाज से सामने आ रहा है, वो भी अपनी औलाद को खोल खोल के समझाओ, बेटा ये शिर्क इस वक्त हो रहा है, ये शिर्क की शक्ल है, ये कुफ्र की शक्ल है, उससे अपने आप को बचाओ। एकदम ओपनली खोल करके अपनी औलाद को शिर्क से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा काम करना है। आप सब नियत करो कि इंशाल्लाह अपनी औलाद को शिर्क से बचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। वह इस कॉल लुकमान लिबनी वह यज हो या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, मेरे लाडले बेटे, तुम अल्लाह के साथ शिर्क मत करो, शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है। और हम जो कलिमा तैयबा पढ़ते उसमें क्या पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान ताजा करो, पढ़ो, सब कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इबादत किसकी करेंगे बोलो, सब बोलो, इबादत किसकी करेंगे, अकेले अल्लाह की। यूं कहो, इबादत किसकी करेंगे, अकेले अल्लाह ताला की। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा तैयबा है हमारा। और मैं आपको हदीस सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को ताजा करो। ताजा घर पुराना होता है ना तो लोग कहते हैं रिनोवेशन कराने का है, कुछ खर्चा करके उसको नया बनाना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान भी ताजा करो, नया करो, फ्रेश करो। ईमान भी हमारा डाउन होता है, डाउन नीचे आता है, जैसे इस वक्त ठंडक का पारा डाउन है और गर्मी का पारा हाई है, तो ईमान का पारा भी डाउन होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को रिनोवेशन करो, अपने ईमान को ताजा करो, अपने ईमान को फ्रेश करो। तो सहाबा ने पूछा, हुजूर हम अपने ईमान को कैसे ताजा करेंगे, तो इरशाद फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उससे तुम्हारा ईमान ताजा होगा। इसीलिए हम भी ये मुबारक कलमा पढ़ते रहे और अपने बच्चों को भी ये मुबारक कलमा रोज ताजा कराओ। ये कलमा, क्या कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इबादत करेंगे अकेले अल्लाह ही की। किसकी इबादत करेंगे, किसकी इबादत करेंगे, अकेले अल्लाह ताला ही की। और जिंदगी गुजारेंगे प्यारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी। और कलिमे शहादत में हम क्या पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो कलिमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने पावर से पढ़ो कि सारे शैतानी शिर्क कुफ्र मिट जावे। पढ़ो पूरे पावर से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله میں گواہی دیتا ہوں میں شخصی بنتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آج جمعہ کی رات ہے نا تو کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے کتنی مرتبہ ہر جمعہ کی رات کو یعنی جمعرات جمعہ کی بیچ کی رات میں کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بناؤ پڑھو گے وہاں افریقہ جانا رہتا ہے رمضان میں ایک عشرے کے لیے کورونا سے پہلے والے اس سے پہلے سال میں ترتیب بنائی کہ بھائی پورے سال ساتھی لوگ جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پڑھے دوسرے سال رمضان میں گئے تو وہاں حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم ہیں ہمارے حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب سے ان کو اجازت بیعت بھی ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک آدمی آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ کب آئے میں نے کہا کیا بات ہے کہا وہ خصوصی انتظار میں ہے کہا بات یہ ہے کہ آپ گزشتہ رمضان میں لوگوں کو یہ معمول سکھا کے گئے تھے کہ ہر جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھو تو کہا ایک ساتھی ہے وہ بہت پابندی سے 300 مرتبہ درود پڑھتے ہیں انہوں نے ابھی ایک جمعہ کی رات میں خواب دیکھا 300 درود پڑھ کے وہ سوئے تھے کہا خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد جہاں معمولات کا سلسلہ رہتا ہے مسجد الفلاح الفلاح مسجد ہے تو کہا اس مسجد کے اندر انہوں نے درود پڑھ کے وہ سو گئے تھے گھر پر تو کہا دیکھا کہ مسجد کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں ان کو حضور کی زیارت ہوئی اور پہلی سب سے لے کر مؤذن جہاں اذان دیتے ہیں وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے تشریف لے گئے کہا یہ 300 مرتبہ درود پاک کی پابندی کی برکت کہ خواب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ 300 مرتبہ درود پاک ہر جمعہ کی رات میں کم از کم پڑھنے کا معمول بناؤ پابندی کرو گے اگر نماز والا درود پڑھو درود ابراہیمی تو بہت اچھی بات ہے ورنہ چھوٹی سائز کا درود پڑھ لو حدیث پاک میں چھوٹی سائز کا درود فضائل درود میں جہاں حضرت نے درود کے صیغے نقل کیے ہیں وہاں 25 نمبر کا درود جو نقل کیا ہے وہ سب سے چھوٹی سائز کا ہے وصلی اللہ علی النبی الامی یہ فضائل درود میں ہے 25 نمبر کے اوپر سب سے چھوٹی سائز کا درود کیا درود پڑھو وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی گویا حدیث پاک میں سب سے چھوٹی سائز کا یہی درود نظر میں آتا ہے اب یہ حدیث کا ہے اور چھوٹی سائز کا ہے 300 مرتبہ پڑھنے میں مشکل سے 5-6 منٹ لگے گی یہ درود پڑھو ہر جمعہ کی رات میں تو انشاءاللہ بہت بڑی فضیلت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں گے تو میں آپ کو کلمہ شہادت پڑھا رہا تھا اور ایمان ہمارا تازہ ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے یہ کلمہ شہادت ہو گیا تو یہ کلمہ توحید یہ کلمہ شہادت اس کا گھروں کے اندر جو ہے پڑھو
पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, घर में अपनी बीवी को बच्चों को पढ़ाओ, ये होना चाहिए। उससे इंशाल्लाह हमारा ईमान फ्रेश होगा, ताजा होगा। इसका जो है सिलसिला शुरू करो घरों में। ये मत समझो कि हमारे बच्चों को कलमा आता ही है, कलमे शहादत आता ही है, भले आता है, लेकिन इसको जो है घर के अंदर पढ़ाओ, पढ़ो तो उसकी बरकत से इंशाल्लाह आपका पढ़ने की वजह से, बच्चों को पढ़ाने की वजह से सबका ईमान ताजा हो जाएगा और हदीस पर अमल हो जाएगा। जद्दीदु ईमानकुम, के ईमान को ताजा करो। और ईमान को ताजा करने का बेहतरीन तरीका कलिमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे को खूब पढ़ो, उससे ईमान बहुत ताजा होगा। एक मर्तबा आलम इस्लाम के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहिमहुल्लाह, बहुत ऊंचे दर्जे के हमारे मुल्क के बुजुर्ग हैं, इंतकाल कर गए। रमजान में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ने अजीब व गरीब मौत अता फरमाई थी। रमजान के अंदर जुमा का दिन था, सूरह कहफ की तिलावत करने बैठे। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सूरह कहफ की तिलावत बंद की और सूरह यासीन पढ़ना शुरू की। और सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते फबशिरहु बिमग़फिरा, वहां पर पहुंचे और इंतकाल हो गए। कि इनको मग़फिरत की खुशखबरी दे दो, उस आयत पर पहुंचे, फबशिरहु बिमग़फिरतिन व अजरिन अज़ीम, वहां पहुंचे और हजरत का इंतकाल हो गया। रमजान में जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते और इस आयत के ऊपर पहुंच करके, अभी जो काबा शरीफ है ये 1417 हिजरी के अंदर पूरा नया बनाया गया। जो पुराना काबा था उसकी जगह पर पूरा नया बनाया किंग फहद के जमाने में 1417 हिजरी के अंदर। और जब काबा बन गया तो उसका उद्घाटन था, जैसे अपने यहां बड़ी मस्जिद बनती है तो उसका उद्घाटन करते हैं, बुजुर्गों को बुलाते हैं। तो किंग फहद थे उस वक्त सऊदीया के बादशाह, उन्होंने दुनिया भर के अंदर जितने भी मुसलमान प्रेसिडेंट है, राजा लोग है, सबको दावत दी काबा के उद्घाटन में, नए काबा के उद्घाटन में। बड़े बड़े राजा लोग, प्रेसिडेंट लोग, मिनिस्टर लोग, दुनिया भर के मुसलमान वो जमा हुए वहां मक्का में। और हजरत मौलाना अली मियां साहब को भी दावत दी थी, अरब के भी बड़े बड़े उलमा थे। जब उद्घाटन का वक्त आया तो कहा काबा शरीफ की चाबी लेकर के कौन पहले दरवाजा खोले, तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम राजा और बड़े बड़े अरब उलमा, लेकिन किंग फहद ने अपने हाथ से चाबी हजरत मौलाना अली मियां साहब को दी कि आप जो है काबा का उद्घाटन कीजिए। हजरत के हाथ से काबा का उद्घाटन कराया था। इतने बड़े हिंदुस्तान के वो बड़े आलिम जब बीमार हुए थे, लखनऊ हॉस्पिटल में थे, तो उस वक्त हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वड़ा प्रधान खुद लखनऊ हॉस्पिटल के अंदर मौलाना की खबर लेने के लिए तशरीफ ले गए थे। खुद वड़ा प्रधान मौलाना की यादत के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। इतने ऊंचे इंसान थे हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा किसी ने हजरत मौलाना के सामने अरबों की कुछ बुरी बातें कही कि भाई अरब लोग यूं करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हजरत मौलाना ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई जिसकी आज के दौर के अंदर हमें कीमत समझ में आती है। फरमाया कि तुम अरबों की कुछ बदअमालियां जिक्र करते हो, सुन लो, जहां हमारी तौहीद की इंतहा होती है वहां उनकी तौहीद की इब्तिदा होती है। जिस जगह के ऊपर जाकर के हमारी तौहीद का एंड होता है वहां उनकी तौहीद की बिगिनिंग और शुरुआत होती है। और हमने देखा है वाकईतन जिंदगी में कई मर्तबा उनके यहां तौहीद इतनी मजबूत इतनी मजबूत इतनी मजबूत कि वो हर चीज में कहेंगे ला अम्र इल्ला बि मशीयतिल्लाहि तआला, कोई बात नहीं अल्लाह के हुक्म से जो होना वो होगा, ला अम्र इल्ला बि मशीयतिल्लाहि तआला, हर चीज में उनका ईमान उनकी तौहीद इतनी पावरफुल इतनी मजबूत। तो आज बस यही चीज है कि हम कुछ जाहिरी आमाल करते हैं नेकी के और उसमें हम बहुत खुशफहमी में बैठे हुए हैं, लेकिन ईमान और तौहीद हमारी अंदर से खोखली हो रही है, अंदर से खोखली हो रही है। और आप जानते हैं कि ये दरख्त ये झाड़ है उसको अंदर से उद्दई लग जाए, उद्दई का कीड़ा, तो वो अंदर अंदर पूरे दरख्त को खा लेता है। अब ऊपर आपको पत्ते बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन वो उद्दई अंदर घुसी और पूरे झाड़ को अंदर से खा लिया, तो किसी भी वक्त ये झाड़ हवा और आंधी में नीचे गिर जाएगा और लोग ले जाकर उसको चूल्हे में जला के राख बना डालेंगे। आज चंद आमाल हमारी जिंदगी में है लेकिन अंदर से तौहीद और ईमान हमारा खोखला हो चुका है और खोखला किया जा रहा है। अजीब अजीब तरीके से कुफ्र शिर्क जिंदगियों में घुसाया जा रहा है, इसीलिए बहुत जरूरत है कि हमारा ईमान प्योर रहे, मजबूत रहे, उसकी हम लोग मेहनत और कोशिश करें, खास तौर पर अपनी औलाद के सिलसिले में। इतने बड़े आलिम हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक बात मैं आपको नकल करूं तो आपको अजीब बात समझ में आएगी। एक मर्तबा हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये चीज तो बाद में लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर बनवा करके भी तकसीम की, मैंने देखे वो लंबे लंबे पोस्टर, मौलाना की ये बात इरशाद फरमाया कि अगर किसी जगह पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का इज्तिमा हो, पूरी दुनिया के मुसलमान जमा हो जाए और मुझे यूं कहा जाए कि मौलाना आपको सिर्फ 15 मिनट बयान करना है इस मजमे के सामने, पूरी दुनिया के मुसलमान और आपको सिर्फ 15 मिनट बयान करना है, तो मैं क्या बयान करूंगा? कहा मैं कुरान की एक आयत उनके सामने बयान करूंगा। क्या आयत? ध्यान से सुनो, अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत इस काल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाह वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ये कुरान की आयत। तो इतने बड़े आलिम दीन जिनके हाथ से काबा का उद्घाटन हुआ और भारत के वड़ा प्रधान जिनके हॉस्पिटल में खबर लेने जा रहे, इतने बड़े आलिम और बुजुर्ग वो फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान अगर किसी मैदान में इज्तिमा में हो और मुझे 15 मिनट बयान करने के लिए कहा जाए तो मैं यही आयत बयान करूंगा। अभी आयत का तर्जुमा और मीनिंग सुनो। अल्लाह के एक बहुत बड़े नबी है जिनका नाम हजरत याकूब अलैहि सलाम है, बड़े नबी है, बड़े पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है हजरत याकूब अलैहि सलाम। और कैसे नबी है कि उनके अब्बा हजरत इसहाक अलैहि सलाम वो भी अल्लाह के नबी, और उनके दादा हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम जिनकी याद में हम हज करते हैं कुर्बानी करते हैं वो भी अल्लाह के नबी, याकूब अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाह के नबी, उनके अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और उनके दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी। कुरान में सूरह यूसुफ है जिसके सुनने में बड़ा मजा आता है हमको, सूरह यूसुफ बहुत प्यारी सूरत है, बड़ा प्यारा किस्सा है। तफसीर सावी में एक जगह नजर से गुजरा कि जन्नती लोग जन्नत के अंदर मजा लेने के लिए सूरह यूसुफ और सूरह मरियम की तिलावत करेंगे, हालांकि जन्नत के अंदर
कोई अमल करने की जगह थोड़ी है, वहां तो मजे करने की जगह है। लेकिन जन्नती लोग मजा लेने के लिए जन्नत में जाने के बाद सूरह यूसुफ और सूरह मरियम की तिलावत करेंगे। और एक बहुत बड़े आमिल साहब यानी तावीज बनाने वाले, एक मर्तबा एक जगह मेरी मुलाकात हुई तो उनके सामने एक पेशेंट था कि जो बेचारा डिप्रेशन में था। डिप्रेशन आजकल बहुत आम हो रहा है, लोग डॉक्टरों के यहाँ टेबलेट लेने जाते हैं। तो एक डिप्रेशन का पेशेंट वो आमिल साहब के पास था। तो आमिल साहब ने वो पेशेंट के घर वालों को यूं कहा कि इसको डिप्रेशन की बीमारी है, रोजाना इसको सूरह यूसुफ सुना। सूरह यूसुफ सुनाने की बरकत से इसका डिप्रेशन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और कोई एक आदमी, कोई हाफिज साहब, कारी साहब, मौलाना साहब अच्छे तरीके से सही तरीके से सूरह यूसुफ पढ़ के कांच की बोतल में पानी में दम करके दे देवे, ये इनको पिलाओ, तो इंशाल्लाह डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो मैंने ये कई लोगों को बतलाया तो बहुत सो की रिपोर्ट ऐसी आई कि सूरह यूसुफ सुनने से माशाल्लाह डिप्रेशन में शिफा होती है। तो मैं आपको भी बतला दूं, किसी को डिप्रेशन टेंशन वगैरह की बीमारी हो तो अपने मोबाइल में सूरह यूसुफ डाउनलोड करके रखो किसी अच्छे कारी साहब की, और उसको सुना करो, और कोई पढ़ देवे तो उस पर पानी पर दम करके पी भी लिया करो, इंशाल्लाह डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो ये हजरत याकूब अलैहि सलातु वस्सलाम खुद अल्लाह के नबी, उनके अब्बा हजरत इसहाक अल्लाह के नबी, उनके दादा हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी, और बेटे हजरत यूसुफ भी अल्लाह के नबी। ऊपर नीचे सब नबियों का खानदान है। लेकिन हजरत याकूब अलैहि सलाम के इंतकाल का वक्त आया, उनकी मौत का वक्त आया, तो याकूब अलैहि सलाम ने क्या किया, उनके सब बच्चे मौजूद इंतकाल के वक्त पर, अब्बा का इंतकाल हो रहा है, 12 बेटे थे, 12 बेटे हजरत याकूब अलैहि सलाम के, ज्यादा औलाद ये भी नबियों की सुन्नत है। तो 12 एक दर्जन बेटे थे हजरत याकूब अलैहि सलाम के, वो सब उनके पास मौजूद थे। तो हजरत याकूब अलैहि सलाम ने इंतकाल से पहले पहले एक सवाल किया। देखो कितना अजीब सवाल, एक नबी दुनिया से जाते वक्त पर अपनी औलाद को क्या सवाल करे और औलाद के लिए क्या फिक्र करे, वो कुरान से सीखो। अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत। दरअसल यहूदी लोगों ने एक गलत बात ये चलाई थी कि हजरत याकूब अलैहि सलाम ने इंतकाल के वक्त यूं कहा था कि सब लोग यहूदी बन के जिंदगी गुजारना, ऐसे ठोक दिया था यहूदी लोगों ने, गलत बात। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि याकूब अलैहि सलाम का इंतकाल हुआ तब एक यहूदी भी मौजूद नहीं था, मैं मौजूद था, अल्लाह फरमाते, और मैंने सुना कि याकूब अलैहि सलाम ने क्या कहा था, इसलिए इस अंदाज में अल्लाह ने फरमाया अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत, कि जब याकूब अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त आया तो तुम में से कोई मौजूद नहीं था। अल्लाह फरमाते कि मैं मौजूद था, मैंने सुना कि उन्होंने अपने बेटों से क्या बात की, और वो बात अल्लाह ने कुरान में उतार दी ताकि कयामत तक के लिए मुसलमानों के लिए एक सबक हो जावे, लेसन हो जावे, नसीहत हो जावे। क्या याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो एक दर्जन बेटे उनके पलंग के चारों तरफ थे। तो बेटों को पूछा, क्या पूछा, माता बुदू नमिम्बादी, ए मेरे बेटो मैं मर रहा हूं, दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे मेरे बेटो, बतलाओ। बस ये असल चीज है कि हमारी औलाद दुनिया में किसकी इबादत करेगी, किसकी बंदगी करेगी, कौन से दीन पर अमल करेगी, इसकी फिक्र करना हर बाप की जवाबदारी है। ये फिक्र करो। आज लोग क्या फिक्र करते हैं कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद का क्या होगा। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि तू अपने मरने के बाद अपनी औलाद का क्या होगा यूं फिक्र करता है, यूं फिक्र करो کہ میری اولاد مرے گی تو ان کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ فکر مت کرو، میری اولاد جب مرے گی تو ان کا کیا ہوگا وہ فکر کرو. اگر ان میں دین ہے، ایمان ہے، اللہ کے نبی کے طریقے ہیں تو اولاد جنت میں جائے گی، ورنہ اللہ نہ کرے اولاد جہنمی بن جائے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو بتلاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے. تو سب نبی کی فیملی کے بچے، 12 کے 12 بیٹوں نے ایک زبان جواب دیا، سبحان اللہ کتنا اچھا جواب دیا، قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ابا آپ اطمینان سے دنیا سے جاؤ، ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گے. کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وہی اللہ جن کی عبادت ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، حضرت اسحاق کرتے تھے، حضرت اسماعیل کرتے تھے. یہ سب لوگ جس ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس ایک اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزاریں گے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی بات مان کے زندگی گزارے، وہ مسلمان. اس لیے میرے دینی بھائیوں، آج کے حالات میں گھروں کے اندر کلمے کا مذاکرہ کرو، روز خود بھی کلمہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، اپنے بچوں کے پاس پڑھاؤ، اور اس کا میننگ اور مطلب اپنی ماترو بھاشا میں اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ان کے دماغ میں بٹھاؤ کہ بیٹا کلمے کا معنی یہ ہوتا ہے، کلمے کا میننگ یہ ہوتا ہے، کلمہ شہادت کا میننگ یہ ہوتا ہے. یہ بچوں کے دماغ میں بٹھاؤ، روزانہ یہ کام کرو، یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. کرو گے یہ کام؟ بہت ضروری، بہت ضروری. ایک واقعہ سنا دیتا ہے، پھر بات مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں امریکہ کے اندر ہمارے ایک دوست ہے مولانا یوسف بھولا صاحب کر کے، کئی سالوں سے امریکہ میں رہتے ہیں، ڈابھیل میں ہی پڑھے ہو، پھر امریکہ چلے گئے. انہوں نے ایک مرتبہ ایک عجیب قصہ وہاں امریکہ کا سنایا. وہ امام ہے وہاں، بہت مقبول امام، بہت اچھا قرآن بھی پڑھتے ہیں، نظم بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے ایک عجیب قصہ سنایا، میں آپ کی عبرت کے لیے سناؤں. کہنے لگے کہ ایک بہت مالدار آدمی کا انتقال ہوا امریکہ کے ایک مشہور شہر میں، بڑے مالدار آدمی، اور اتنے مالدار آدمی کہ ان کے 4 لڑکے، اور سب لڑکے الگ الگ سٹی میں، کوئی نیو یارک میں، کوئی سان فرانسسکو میں، کوئی واشنگٹن میں، 4 لڑکے امریکہ کے الگ الگ شہر میں رہ رہے، اور چاروں آج کی بھاشا میں کہوں تو ویل سیٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، ایسی اچھی اچھی ڈگری والے چاروں لڑکے، اور چاروں بزنس میں، پیسوں میں، گھر میں ویل سیٹ ایک دم. ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. ابا بھی بڑے مالدار اکیلے رہتے تھے، بچے تو سب الگ الگ شہر میں رہے. باپ کا انتقال ہوا تو وہاں ہماری یہاں جیسی نعمت تھوڑی ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آج مرے تو ایک ہفتے کے بعد جنازہ ہوئے، وہاں ایسا ہوتا ہے. یہ تو ہماری یہاں ہے ماشاءاللہ کہ آج انتقال ہوا اور جلدی قبر تیار کرو اور دفن کر دو. ہماری یہاں کی زندگی بھی بہت اچھی، موت بھی بہت اچھی. وہاں تو بعض مرتبہ ہفتہ ہفتہ نہیں، مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے دفن کے اندر. تو بچے سب آ گئے الگ الگ سٹیوں سے، ایروپلین کی وہاں بہت فیسیلٹی ہے. دوسرے دن جنازہ تھا. اب جنازے کا وقت آیا تو 17 آدمی تھے جنازے میں، 70 आदमी, लाखों डॉलर का मालिक आदमी, 70 आदमी जनाजे के अंदर। अब जब नमाज का वक्त आया, थोड़ी देर में अब जनाजा उठा के वहां मस्जिद में एक तरफ ले जाके नमाज पढ़ने वाले थे, तो वो चारों लड़के रो रहे, चारों बेटे रो रहे। डॉक्टर बेटा भी रो रहा है, इंजीनियर बेटा भी रो रहा है, प्रोफेसर बेटा भी रो रहा है। तो महाराणा यूसुफ भोला साहब गए थे जनाजे की नमाज पढ़ाने, उन्होंने तसल्ली दी, बेटा अब्बा अल्लाह की नेमत थे, उनकी एज हो गई 80 ओवर एज हो गई, 80 साल के ऊपर हो गए, इस उम्मत की उम्र 60-70 के बीच में है, तो तुम्हारे अब्बा तो डबल बेनिफिट में 80 के ऊपर मरे, अच्छी जिंदगी गुजार के गए, मौत आ गई, सबर से रहो। तो भी वो रो ही रो रहे, तसल्ली दे रहे, फिर भी रो रहे। तो मौलाना हैरान कि ये रोते क्यों है। तो थोड़ी देर के बाद मौलाना ने पूछा कि आपको इतनी तसल्ली दे रहा हूं, जनाजे की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन आप इतने रो रहे हैं। तो उसमें से एक बेटे ने अपना रोना कंट्रोल किया और काबू में करके हिम्मत से अजीब जवाब दिया, अल्लाह ऐसे जवाब और दिन से आपकी और मेरे फैमिली की हिफाजत करे, कहो आमीन। क्या जवाब दिया एक बेटे ने कि मौलाना साहब अभी जनाजे की नमाज होगी हमारे बाप की, आप लोग जनाजे की नमाज पढ़ लेना, हम चारों भाई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, चारों भाई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। मौलाना ने पूछा क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो कहा कि हमको जनाजे की नमाज पढ़ना ही नहीं आता है, इसीलिए हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो कहा क्यों जनाजे की नमाज पढ़ना नहीं आता, तो बेटे कहने लगे हमारे मरहूम बाप ने हमको डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन हमारे बाप ने कभी हमको मदरसा मकतब के अंदर नहीं भेजा, दीन नहीं सिखाया, नमाज नहीं सिखाई, कलमा नहीं सिखाया। तो आज ये वक्त है कि सगे बाप का जनाजा है, लेकिन हम चारों भाई नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, हमको आती नहीं, बाप ने सिखाई नहीं, कभी मदरसे मकतब के अंदर नहीं भेजा, हम कैसे जनाजे की नमाज पढ़ें। और मौलाना ने कहा कि वाकईतन ऐसा हुआ, 17 में से हम 13 आदमी ने नमाज पढ़ी और वो चारों भाई अदब वार के खड़े रहे और देखते रहे तमाशा क्या हो रहा है। अल्लाह ऐसा बुरा दिन हमारे घर में न लावे, इसके लिए अपनी औलाद को मदरसों में भेजो, मकतब में भेजो, आलिमों के पास भेजो, जमातों में भेजो, इससे दीन सीखेंगे, ईमान सीखेंगे और ईमान वाली जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह को राजी करेंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसीलिए आइंदा कल से हर मुसलमान अपने घर में कलीमे तैयबा और कलीमे शहादत का मुजाकरा शुरू करे, करोगे वादा करो, और उसको अपनी जुबान में उसका मीनिंग बच्चों के दिमाग में बिठाओ कि बच्चा कलमे का मीनिंग ये होता है, कलमे का तर्जुमा ये होता है, और जितना शिर्क और कुफ्र होता है वो बच्चों को अपन समझाओ कि बेटा ये काम हम नहीं करते, बेटा ये काम हम नहीं करते, ये हमारा ईमान है, हमको ये काम नहीं करना, ये समझाओ उनको। घर में ये माँ बाप की तालीम होगी, मदरसे में जाएंगे, आलिमों के पास जाएंगे, जमातों में जाएंगे, उनका ईमान मजबूत होगा और इंशाल्लाह हमारी नस्लों के अंदर अल्लाह ईमान को बाकी रखेंगे। औलाद बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत, लेकिन ये नेमत कब होगी, जब दीन होगा, दीन औलाद में, तब नेमत होगी। अल्लाह के नबियों ने औलाद मांगी अल्लाह से, लेकिन नेक औलाद मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में कुरान में मिलता है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह नेक औलाद मुझे अता करो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ए अल्लाह आप अपने खजाने से मुझे नेक और पाकीज़ा औलाद दो, आप दुआओं को सुनने वाले हैं। हमारे हजरत फकीहुल उम्मत مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کئی مرتبہ سنا، لوگ آ کے حضرت کو کہتے ہیں حضرت شادی ہو گئی، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوتے. تو حضرت ہمیشہ ان کو کہتے تھے کہ یہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا میاں بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں نیک اولاد عطا کریں گے. یہ قرآن دعا ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ اپنے خزانے سے ہمیں پاکیزہ نیک اولاد عطا فرماؤ. آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. تو اولاد نعمت ہے، لیکن کب نعمت ہے؟ جب ان کو نیک بنائیں گے، جب ان کو دیندار بنائیں گے، دینی ذہن پر بنائیں گے، تو انشاءاللہ اولاد نعمت بنے گی، ورنہ وبال بنے گی کہ باپ کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے. اللہ ایسے برے حالات سے ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ ہمارے گھروں کے اندر تا قیامت دین کو باقی فرمائیں. ایک دعا ہم نے ہمارے بزرگوں سے سیکھی، آپ بھی یہ دعا مانگو اللہ سے. کیا دعا؟ اے اللہ میری اور میری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کے ایمان اسلام کی حفاظت فرما. یہ دعا مانگنا سیکھ لو. کیا دعا کرو گے؟ اے اللہ میری اور میری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. مجھے اور میری اولاد اور نسلوں کو اے اللہ سچا پکا مسلمان بنا دو. یہ دعا مانگنا شروع کرو بھائیو، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنی قیامت تک آنے والی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ بہت ضروری، بہت ضروری. اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا. دیکھا بھی کرو کہ وہ موبائل میں کیا دیکھتے اور سنتے ہیں، اس پر بھی ذرا نظر رکھو. یہ ہے نا، یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، میں تو اس کو شیطانی نیٹ کہتا ہوں. انٹرنیٹ نہیں، شیطانی نیٹ. اور اس کے اندر تو جان جاتی ہے، جان لوگوں کی، لوگ مر جاتے ہیں. سیلفی لینے میں، چیٹ کرنے میں لوگ مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی ٹرین میں کٹ جاتا ہے. ابھی کچھ وقت پہلے ہمارے گجراتی اخبار میں، نیوز پیپر میں آئے کہ وہ ٹرین آ رہی اور وہ پاٹے پر کھڑے رہ کر چیٹ کر رہا ہے، وہ ٹرین والا ہارن مار رہا ہے تو ابھی اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے، ٹکڑے ہو گئے ٹرین کے اندر. کیسا پاگل پنا موبائل اور انٹرنیٹ کا. تو یہ ایک جنون اور پاگل پنے کے درجے میں یہ چیز آ گئی، اس کے اوپر بھی کنٹرول کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے. اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ میری اور آپ کی قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کی اور ہم سب کے ایمان کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرمائے. ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے کفر سے، ہر طرح کے ارتداد سے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلتے چلتے گھر جاتے ہوئے 300 مرتبہ درود پاک کا وظیفہ بھی پورا کر لے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے.
دعا کرا دیجیے، بہت کرم ہوگا آپ کا. اے مفتی صاحب، ضرورت سے دعا کرا لو.